अच्छा, एक सवाल ये है कि ईशा की नमाज़ के वितर बैठ कर पढ़ सकते हैं, क्या यह बात सही है कि सुन्नतें गैर मुअक्कदा पढ़ने के बाद कुछ देर तस्बीहात पढ़नी चाहिए और फिर फ़र्ज़ पढ़ने चाहिए? कुछ लोग सुन्नतें पढ़ने के बाद जगह तब्दील करके फ़र्ज़ पढ़ते हैं, अगर कोई उज़र की वजह से न कर सके तो सही है? ईशा की नमाज़ के बाद वितर बैठकर नहीं पढ़ सकते, वितर की नमाज़ खड़े होकर पढ़ना ज़रूरी है। कोई उज़र हो तो अलग बात है, बिला उज़र वितर की नमाज़ बैठकर पढ़ना दुरुस्त नहीं है। और सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने के बाद कुछ देर तस्बीहात पढ़नी चाहिए और फिर फ़र्ज़ पढ़ने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सुन्नतें यानी असर से पहले कि इंसान ने गैर सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ी हैं, या ईशा से पहले कि अगर सुन्नत पढ़ी हैं और फिर उसके बाद बग़ैर कुछ पढ़े, सिर्फ तस्बीह यानी वो नमाज़ पढ़ने के बाद या नफिल पढ़ने के बाद फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, दरमियान में कुछ पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग सुन्नतें पढ़ने के बाद जगह तब्दील करके फ़र्ज़ पढ़ते हैं। हाँ, फ़र्ज़ पढ़ने के बाद अगर आसान सहूलत है तो जगह थोड़ी सी बदल लेनी चाहिए। मस्जिद में नमाज़ पढ़ें तो उसकी ताकीद ज़्यादा है, इमाम के लिए ज़्यादा ताकीद है, मुक्तदियों के लिए भी ताकीद है, और घर में नमाज़ पढ़ने वालों के लिए उससे कम ताकीद है। लेकिन बेहतर है, हम ये कह सकते हैं कि बेहतर है कि जहाँ फ़र्ज़ पढ़े हैं और जहाँ सुन्नतें पढ़ी, थोड़ी सी जगह इंसान थोड़ा सा ही, चाहे थोड़ा सा ही, एक कदम ही आगे पीछे हो जाए, साइड पे हो जाए, दाएं बाएं हो जाए, बेहतर है। अच्छा, एक और सवाल है कि अगर कोई बुरा काम करना है करता है और हमने अपने तौर पर अच्छे तरीके से अमर बिलमारूफ भी कर लिया मगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उससे कितना और किस तरह का ताल्लुक़ रखें? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उस पर हम कोई एक ख़ास ज़ाब्ता और उसूल बयान कर सकें, हर एक की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। अगर उसके साथ ताल्लुक़ न रखने से फ़ायदे की उम्मीद है, थोड़ा ताल्लुक़ कम करने से फ़ायदे की उम्मीद है, या कभी ऐसा होता है कि उसके साथ वही दोस्ताना ताल्लुक़ रखने की वजह से उस बुराई से हम भी मुतासिर हो जाएं, ऐसा ना हो कि हम भी उस बुराई को फिर हल्का समझने लग जाएं, इन चीज़ों को देखते हुए इंसान फ़ैसला करेगा। इसमें कोई लिमिट लगाना और हद मुकरर करना कि इतना ताल्लुक़ रखें इतना ना रखें, हाँ इतना है कि दिल में कराहत और नापसंदीदी हो उस काम की और इंसान कोशिश करता रहे, कभी कभी उसको समझाता रहे और यानी उसका अहतमाम करे के रोकता रहे, और इस ताल्लुक़ को इस्तेमाल करें रोकने के लिए, तो फिर ठीक है। बहरहाल यानी जैसे आम एक यानी बुराई न करने वाले के साथ एक जो ताल्लुक़ होता है उसमें और इस ताल्लुक़ में फ़र्क तो आएगा, लेकिन फ़र्क कितना आएगा उसमें हर एक की हैसियत के लिहाज से, वो हमारी उसके साथ क्या कैसे कैसा मामला है, कैसा ताल्लुक़ है, वो हमारी बात को कितनी अहमियत देता है, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। बाप होगा तो मामला अलग होगा, भाई है तो मामला अलग है, मुख्तलिफ लोगों के साथ अहकाम में फ़र्क आता है। सवाल यह है कि अक्सर मसाजिद में फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद कोई ऐलान करना हो तो फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद होता है, और जैसा आपने अभी बताया कि फ़र्ज़ नमाज़ के बाद अक्सर लोग बातों में लग जाते हैं, और जैसा आपने एक बार फरमाया था कि फ़र्ज़ के बाद सुन्नत फ़ौरन अदा की जाए, अगर दुनियावी बात यह काम में लग जाए तो सुन्नत नमाज़ का दर्जा फिर सुन्नत का नहीं रहता बल्कि नफिल में बदल जाता है, तो जो मैनेजमेंट के लोग फ़र्ज़ नमाज़ के बाद सुन्नत का वक्फ़ा दिए बग़ैर माइक पर ऐलान करते हैं, तो इसका क्या हुक्म है? असल यह है कि फ़र्ज़ नमाज़ के बाद सुन्नतें पढ़ने से पहले दुनियावी बातों में नहीं लगना चाहिए। मसाजिद में आमतौर से कोई दीनी ज़रूरत पेश आती है, मस्जिद की कोई ज़रूरत पेश आती है, उसके लिए कोई ऐलान होता है, और कभी होता है मुख्तसर होता है, मुख्तसर बात कह दी, तो उस हद तक इसलिए कि सुन्नतों के बाद तक लोग ठहरेंगे नहीं, तो उस वक्त अगर कोई ज़रूरी बात कह दी तो उसकी इजाज़त है। बाकी यह है कि उसके बाद फिर लोग आपस में बातों में ना लग जाएं, ये जो खैर खैरियत और सलाम वगैरह यह जो होता है ये सब सुन्नतों के बाद हो, उससे पहले ना हो। ऐसा नहीं है कि फिर सुन्नतों का दर्जा सुन्नत नहीं रहेगा, नफिल बन जाएगा, हाँ उसकी फजीलत में कमी आ जाएगी, ये बात दुरुस्त है। अच्छा, जबकि उस वक्त इमाम साहब भी मौजूद होते हैं, फ़िक़ी मसले में ये सब बातें। अच्छा, वही तो खुलासा वही है कि कोई ज़रूरत की बात है, बाद में लोग चले जाएंगे और मज़ाहिर मस्जिद की ज़रूरत वगैरह से मुतालिक ही कोई ऐलान होगा वहाँ के, तो उस लिहाज से अगर मुख्तसर कभी कोई ऐलान कर दिया जाए तो बस ऐलान की हद तक होगा, वो बात बता दी, उसके बाद फिर आपस में मशवरे और बातचीत वगैरह जो भी हो वो बाद में हो, वो सुन्नतों के बाद हो, सुन्नतों से पहले दुनियावी बातों में लगना ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, अगर मुख्तदी को सहू हो जाए तो जब इमाम सलाम फेर ले तब सजदे सहू करे या पहले करे? मुख्तदी अगर गलती कर ले नमाज में तो उसको सजदे सहू करने की ज़रूरत नहीं है। इमाम के पीछे होते हुए मुख्तदी से गलती हो जाती है तो उस मुख्तदी को इमाम के पीछे चूंकि वो था और उससे गलती हुई है तो उसको सजदे सहू करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई फजर और जहर में रोज़ का मामूल बना ले कि वक्त ख़त्म होने से 5-10 मिनट सिर्फ पहले पढ़ता हो, क्या ऐसा करना दुरुस्त है? फजीलत में कमी ज़रूर आएगी, फ़र्ज़ अदा हो जाएगा लेकिन फजीलत में कमी आ जाती है उसकी वजह से। हदीस में आता है कि नमाज़ को उसके इब्तदाई वक्त में पढ़ना ये फजीलत और अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया है, मफहूम बयान कर रहा हूँ, और आखिरी वक्त में पढ़ना तो गोया बस ज़िम्मेदारी सज़ा से बचने के लिए और ज़िम्मेदारी पूरी करना है, उस लिए ये दोनों में फ़र्क आता है। तो शुरू वक्त में पढ़ना और इब्तदाई वक्त में पढ़ना जो मुस्तहब वक्त है उसमें पढ़ना ये फजीलत की चीज़ है, बिल्कुल अखीर तक मुअख्खर करना गोया कि बस अब मार के डर से और सज़ा के डर से बचने के लिए कर रहे हैं, बस एक फ़रीज़ा अदा करने के हद तक हो जाता है, फजीलत में कमी आ जाती है। सवाल है कि फजर की अज़ान हो गई लेकिन किचन में काम होता है, क्या नमाज पढ़ने से पहले यासीन की तिलावत कर सकते हैं? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। सुबह का वक्त शुरू हो गया तो फी सदर नहार आता है दिन के शुरू में, तो दिन का शुरू हो चुका है सुबह सादिक से, उसके बाद फजर की नमाज़ से पहले यासीन पढ़ें बाद में पढ़ें, दोनों सूरतों में फजीलत हासिल हो जाएगी। क्या कोई ख़ास दुआ है, कोई दुआ है, कोई ख़ास अमल है हसद के लिए? सूरह फलक और सूरह नास, सूरह फलक में तो ख़ास तौर पर हसद का ज़िक्र है, इंसान उसका एहतमाम करे तो अपने अंदर अगर बीमारी है तो उससे भी इंसान अपने आप को बचाने की नीयत कर सकता है, और दूसरों की हसद, ख़ास तौर पर दूसरे हसद जब करते हैं और इंसान के ख़िलाफ़ कुछ करते हैं उसकी शर से हिफाजत के लिए सूरह फलक बहुत अहम सूरत है, लेकिन सूरह फलक के साथ तो नास भी पढ़ ले तो अच्छा है। अच्छा, एक और सवाल है, बहुत अहम सवाल है और औरतों में बहुत आम है कि माएँ जो हैं उनको बच्चों की तरबियत के लिहाज से बहुत सी मर्तबा ये मुश्किलात पेश आती हैं कि बच्चे ऐसी बदअख्लाकी का मामला करते हैं जिससे माँ को गुस्सा आता है। अब अगर उसको रहने दें तो ऐसा लगता है कि बच्चे की बुरी बात पर हम खामोश रह रहे हैं तो उनकी तरबियत पर असर पड़ता है, और अगर उन पर गुस्से का इजहार करते हैं, गुस्सा निकालते हैं तो फिर उससे भी बुरा असर पड़ता है। लंबा सवाल है, इंशाअल्लाह कभी इस पर बात करेंगे इत्मीनान से, जैसे मैंने बताया था 3:15 के वक्त मैंने दिया हुआ था उनको, तो इंशाअल्लाह कभी, यानी सवाल अहम है, इंशाअल्लाह कभी इस पर इत्मीनान से बात करेंगे। मुख्तसर बहरहाल ज़हन में ये रखें कि जब किसी बात पर गुस्सा आता है तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हों कि अल्लाह, ये जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में हमें सबक दिया गया है, सबसे पहले तो अपनी बात पर इंसान नज़र करे कि हमारी तरबियत का ये असर है कि हमारे साथ बच्चे इस तरह मामला पे में पेश आ रहे हैं, या हमारा अल्लाह ताला के साथ ऐसा मामला होगा कि हम अल्लाह की कुछ अहकाम की नाफरमानी करते हैं जिसकी वजह से हमारी औलाद और हम और ये जो हमारे माताहत हैं वो हमारे साथ इस तरह का मामला कर रहे हैं। सबसे पहले तो नज़र इंसान की अपने आप पर हो, अल्लाह ताला से दुआ मांगें और उनको फिर उनकी तरबियत उनके फ़ायदे के लिए कुछ कहें, तो इस नीयत से, नीयत खालिस करके कहें कि अपना गुस्सा निकालना मकसद नहीं है, خالص ان کا فائدہ مقصد ہے، جتنی بات میں ان کا فائدہ ہے اتنی بات کہہ دی، جس میں فائدہ نہیں ہے وہ نہیں کہی. اپنا غصہ نکالنا اگر مقصد ہوگا تو ان پر برا اثر پڑے گا، تاثیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ان کی تربیت مقصود ہوگی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ اچھا ہوگا. یہ مختصر لفظوں میں ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ ہمارے اکابر کیوں صرف نکاح نہیں کرنے دیتے پھر بعد میں رخصتی؟ جیسے کہ میری نکاح اور رخصتی بھی ایک دن میں ہوئی تھی اور میں اپنے شوہر کو نہیں جانتی تھی. سب نے کہا تھا اچھا ہے، لیکن وہ تو بہت زیادہ یہ مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے اکابر نے اب اس سے کہ ہر زمانے کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر زمانے کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس زمانے کے ایک تو ہوتا ہے شریعت کا ایک حکم ہے، ایک ہوتا ہے حالات کا تقاضا ہے. تو ہر زمانے کے بلکہ ہر زمانے میں ہر ملک کے حالات مختلف ہوتے ہیں. مثلا ہم ہندوستان وغیرہ کے علاقے میں دیکھیں تو ابھی بھی بہت سے علاقے وہ ہیں کہ تقریباً بچہ 5-6 سال کا ہوتا ہے تو تقریباً ان کی منگنی ہو جاتی ہے، خاندان میں جو قریب ترین ہوتا ہے وہ گویا کہ متعین ہے کہ اچھا اس کے ساتھ اس کی منگنی ہو گئی، رشتہ طے ہوتا ہے. ہمارے یہاں ان ملکوں میں یہ چیز نہیں ہے، ابھی بھی بعض خاندانوں میں ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہمارے ساتھ طالب علم کے دور میں تھے، کہا کہ ہمارے تو 5 سال کے تھے تبھی ہمارا تقریباً 4-5 سال کے تھے ایک طرح سے رشتہ طے ہو گیا تھا. تو حالات کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے، کہیں اس میں نقصانات زیادہ ہوتے ہیں کہیں اس میں کچھ فائدے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے فرق پڑتا ہے. جو شریعت کے احکام ہیں وہ شریعت کے ہیں، اگر کسی شرعی وجہ سے منع کیا ہو تو معاملات مختلف ہیں، کہیں حالات کی وجہ سے منع کیا ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا اس کے بعد ایک طرح سے وہ میاں بیوی بھی ہیں اور ایک طرح سے آپس میں ان کا ساتھ ہیں بھی نہیں، اور اس دوران چونکہ ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ایسی باتیں پیش آ جاتی ہیں جو ناراضگی کی ہوتی ہیں اور تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. نکاح تو نکاح ہے، بیوی ہے، ساتھ رہ کر بات کرنے میں وہ بات نہیں ہوتی جو دور رہ کر باتیں سننے میں، ادھر ادھر کے باتوں میں اور کبھی کبھی اس طرح کے حالات میں مشکلات پیش آ جاتی ہیں، اور یہ بڑی مجرب چیز ہے اس طرح ہوتا ہے. تو اس لیے بھی ہمارے ملکوں میں منگنی ہوتی ہے اور منگنی کے بعد ایسا سمجھتے ہیں کہ نکاح ہو گیا اور اس کے بعد تعلقات بہت آپس میں بے تکلفی کے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے کتنے مسائل پیش آتے ہیں، آپس میں ناراضگیاں، خاندان ٹوٹتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں. تو یہ کچھ حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بڑے منع کیا کرتے تھے. بہرحال یہ شرعی مسئلہ الگ چیز ہے اور حالات کا تقاضا الگ چیز ہے، اور اس کا یہ حل نہیں ہے کہ نکاح کے بعد کچھ دن ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو پہچان لیں. یہ حل نہیں ہے اس لیے کہ وہ پہچاننے کے لیے صحیح وقت نہیں ہوتا ہے، وہ جوش کا وقت ہوتا ہے، وہ ہوش کا وقت نہیں ہوتا کہ اس وقت میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو صحیح طور پر پہچان سکیں. کچھ دن تو انسان اگر کسی مثلاً اگر کوئی مرد غصے والا ہے وہ چند دن تو بغیر غصے کے گزارا کر لے گا، اس لیے کہ ابھی تو پوری طرح ساتھ رہے نہیں. ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں، ساتھ سفر ہوتا ہے، ساتھ مشکل اوقات ساتھ آتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کس کے کیا مزاج ہے. تو اس لیے یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ساتھ رہنا شروع کر دیں یا ساتھ بات چیت شروع کر دیں جس سے بات معلوم ہو جائے کہ وہ کیسا ہے. دو بچے ہیں، عالمہ کا کورس کرنا ہے لیکن بہت سٹریس لے رہی ہوں، بچوں کو صحیح ٹائم نہیں دے سکتی، میں کنٹینیو کروں؟ اگر بوجھ معلوم ہوتا ہے، سٹریس ہے، تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے. عالمہ کا کورس کرنا کوئی ضروری نہیں، پہلے انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے اولاد کا خیال رکھنا ہے، اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں، اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا جو ہے وہ انسان کے ذہن کو اور زیادہ اس میں نشاط پیدا ہوتا ہے، ذرا سا انسان میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ انسان پڑھتا رہے، کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے. لیکن پورا کورس کے طور پر پڑھنا یہ کوئی شرعاً مطلوب نہیں ہے کہ انسان اس وقت جا کر یہ ذمہ داری، کوئی کر سکتا ہے کر لے، آسانی سے کر سکتا ہے کر لے، لیکن اس کی وجہ سے بوجھ پڑ رہا ہے تو پھر زیادہ بوجھ اپنے اوپر نہ لیں، کوئی بات نہیں، ایک سال تین سال میں بھی کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جلدی تو ہے نہیں ختم کرنے کی، ختم کرنا مقصد ہی نہیں ہے، مقصد پڑھنا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھے، لیکن ذمہ داری اپنے اوپر اتنی نہ لے کہ اس کی وجہ سے پڑھنے میں بھی دماغ تھکے اور بچوں کے ساتھ بھی، اور ان کی تربیت پہ جو اثر پڑے گا وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ پھر تو خیر، یعنی یہ اصولی بات ہے کہ بچوں کو پہلے، اور بچوں کے سکھانے کے لیے اور کوئی انتظام ہو سکتا ہے، اپنا تھوڑا بہت سیکھ کے انسان بچوں کو سکھا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ انسان پورا عالمہ کا کورس کرے پھر ہی بچوں کو پڑھائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ عالمہ کا کورس میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو سکھانے کی نہیں ہوتی۔ اچھا، مشرومز حلال ہیں؟ ہاں بالکل حلال ہیں، مفید چیز ہے، حدیث میں اس کو فائدہ مند قرار دیا گیا ہے۔ اچھا بس، اب میں سوالات کو روکتا ہوں اس لیے کہ ہمارا وقت کافی اوپر ہو گیا ہے، اور پھر یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ ہمارے دو ہفتے تک آئندہ کوئی سبق، کوئی درس وغیرہ نہیں ہوگا۔